해줘야죠.
선제.
कल की मुरली उपयुक्त वाणी कौन सा युग है?
धर्माव युग है।
धर्माव अर्थात नहीं, धर्माव का शब्द अर्थ
धर्माव का धारणा
चैरिटी इंग्लिश मुरली एज ऑफ चैरिटी जिसमें दान पुण्य कर किया जा सकता है। तो धर्माव निकालना अर्थात दान पुण्य करना। तो ये युग है धर्माव युग। और कौन सा युग है? चढ़ती कला का युग है। और कौन सा युग है? संगम युग के नाम
परिवर्तन
युग, कला का युग, परिवर्तन युग और
महान बनने का युग।
महान बनने का युग, महान युग,
महान युग,
महान बुराइयों को दान देने का युग, परमात्मा मिलन का युग, प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग, मुक्ति जीवन मुक्ति को असम। ये कहाँ से लिया आपने? ये बाबा ने 84 की मुरली में बोला है।
क्या जी भाई साहब, कौन सी अलमारी में कौन से खाने में रखा है पर पता नहीं मेरे को।
84 की नहीं, ये जो पॉइंट आपने जो बोली ना, सिख राइट्स हुए थे 1984 में, सिख राइट्स हुए थे, इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी ना, उसके बाद में 31 अक्टूबर से लेके तो 4 नवंबर तक सिख राइट हुए थे, और 17 जनवरी 1984 को ये मुरली चली थी जिसमें बाबा ने संगम युग के नाम गिनाए थे। महान, उसमें ये पहली बार बाबा ने बोला ये युग है असंभव को संभव करने का युग, ये है महान युग, ये है मौजों का युग, मनोर ये है परिवर्तन करने का युग, ये महामिलन का युग, ये छोटा सा युग महाराज, ये छोटा सा युग है पर इसमें प्राप्तियां बहुत ज्यादा है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है जो कि किसी भी युग में वो नहीं होता है जो इस युग में होता है। इस युग में ऐसी क्या क्या चीजें होती है जो बाकी युगों में नहीं होती है? घटनाएं ऐसी कौन कौन सी है? ऐसी कौन सी मुख्य घटनाएं हैं जो इस युग में होती है बाकी चारों युगों में नहीं होती?
स्वयं भगवान का अवतरण,
परमात्मा अवतरण इस युग में होता है।
ब्रह्मा का पाय,
ब्रह्मा का जन्म होता है इस युग में, बाकी किसी युग में ब्रह्मा नहीं है, इसी युग में ब्रह्मा का पाठ। और
निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा को याद करने का ये जो युग है
ना, नहीं कौन सी घटनाएं ऐसी है जैसे ब्रह्मा का एक ये हो गया, दूसरा परमात्मा अवतरण हो रहा है इस युग में, ये एक घटना है, एक नई बात है कि जो बाकी युगों में नहीं हो रही है।
ये है पवित्रता को
धारण
करने के लिए अनेक सितम सेने का युग।
नया एक नया पॉइंट निकला है।
भगवान अपने बच्चों को स्वयं खुद आकर पालना देने का,
भगवान आकर पालना देते हैं,
पालना देने का समय जो है।
नहीं, भगवान से रिलेटेड और थोड़ी दूसरी बातें,
मतलब मुख्य घटनाएं
घटनाएं जो हो रही है, मतलब ज्ञान को थोड़ा, मतलब और क्या क्या हो रहा है जैसे
संसार में,
संसार में जैसे
ये
वो युग है। हाँ, ये वो युग है जिसमें तीनों सत्ता है, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, इसी समय पर अपने पराकाष्ठा पर है, अपनी चरम उत्कर्ष पर है, परम उत्कर्ष पर है। ये एक दूसरा, ये वो युग है कि जिसमें सर्व धर्म की आत्माएं विद्यमान हैं, उनके धर्म स्थापकों के साथ, इसी युग में
वैरायटी
नहीं है,
बाकी कैसे हो सकते, बाकी है आए नहीं।
ये बहुत बड़ी
घटना है।
कौन सा युग है?
कौन सी बात है?
ये वो युग है जहाँ एक साथ एक माता ग्यारह बच्चे
ग्यारह बच्चों को,
ग्यारह तंदुरुस्त
जच्चा बच्चा सब तंदुरुस्त,
जच्चा बच्चा
हाँ सब संपूर्ण चलो छोड़ो
उसको, चेत चलता करके उसको छोड़ दो। अच्छा आप तो दूसरी बात बता रहे हैं, फिर आप 17 आप वो वाली मुरली बता रहे हैं, आप 7 जनवरी 1980 की मुरली बता रहे हैं ये आप 7 जनवरी 1980 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने 17 पॉइंट्स बताए हैं,
सुना ब्रह्मा कुमारी के गूगल वाई सचिन वाई
जिसमें बाबा ने 17 पॉइंट बनाए, सतयुग में क्या होता है और संगम युग में तुम्हारा भाग्य सतयुग के देवताओं से श्रेष्ठ कैसे, आपने मुझे एक बार फॉरवर्ड किया था
80
की मुरली है ना, 7 जनवरी 1980 की मुरली है।
हाँ ठीक है,
पेज नंबर 19
ठीक दूसरी मुरली है
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है शिवानंद भाई सतयुग के देवताओं से हम श्रेष्ठ क्यों है, अच्छा बताओ थोड़ा एक आपने बताई ना यहाँ पर प्रत्यक्ष फल है, वहाँ पर देवताएं वृक्ष के फल खाते हैं, यहाँ तुम वृक्षपति द्वारा प्रत्यक्ष फल संबंध सर्व संबंधों का फल, वहाँ तुम दो नेत्रियों, यहाँ पे त्रिनेत्रियों, वहाँ तुम विश्वनाथ हो, यहाँ वहाँ तुमको गदेलों पर सोते हो, यहाँ तुम बाप की गोद में सोते हो, वहाँ तुम रत्न जड़ित झूलों में झूलते हो, यहाँ तुम अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, प्रेम का झूला, वो सारे
खुशी का झूला,
नहीं इससे भी पावरफुल पॉइंट है, वहाँ प्रकृति उठाती है, यहाँ प्रकृति का मालिक भगवान उठाता है,
उससे भी ये अभी
नशा है,
अभी रास्ता ठीक लग रहा है, अभी ठीक रास्ता आ रहा है, नहीं तो
भटक गए, वहाँ भगवान उठाते हैं, यहाँ पर
प्रकृति के पति
प्रभाव, प्रकृति यहाँ प्रकृति का मालिक के पति, प्रकृति पति भगवान उठाते, वहाँ पर पंछियों के साथ सुनते हो, यहाँ मीठे बच्चे ये साथ सुनते हो सुबह सुबह,
वहाँ खटिया नहीं लाते हैं भगवान खटिया हिला देते हैं,
यहाँ भगवान खटिया हिला
वहाँ तुम दास दासियों के हाथ से पलते हो, यहाँ स्वयं तुम्हारी पालना भगवान करते हैं, वहाँ महान आत्माएं तुम्हारे माता पिता है, यहाँ स्वयं भगवान तुम्हारे माता पिता है, परम पिता उनके भी माँ बाप तुम्हारे माता पिता है, वो जो मुरली में जो पॉइंट है ना वो इस तरह की सारी 17 पॉइंट
पढ़ाएंगे,
यहाँ भगवान पढ़ाते, ये पॉइंट उसमें नहीं है पर ये भी ऐड हो सकता
है, एक और पॉइंट है क्या कोई 56 प्रकार का भोजन,
वो भोजन वाला पॉइंट उस मुरली में नहीं है पर ये ऐड हो सकता है, ब्रह्मा भोजन वहाँ नहीं है
लेकिन यहाँ ब्रह्मा भोजन,
यहाँ पर देवता है, अभी दूसरा प्रश्न है क्या देवता है ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, बाबा बताते वो तो सूक्ष्म वचन की बातें हैं, ब्रह्मा भोजन का तो उनको ज्ञान ही नहीं है, क्यों तरसेंगे वो, बाबा ने एक अभी लास्ट हफ्ते में एक मुरली में बोला था देवताओं का शुद्ध भोजन होता है, यहाँ का तो सब तमोप्रधान है, हाँ
इसलिए कि जो
है उनको ब्रह्मा भोजन का ज्ञान ही नहीं है ना, ये भक्ति में है गायन ऐसा, ये इधर नहीं है, ऐसा देवताओं को कभी ऐसा तरसते नहीं है, देवताएं पहली बात तो देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती इस तमोप्रधान जमीन
पर, जो बनने वाले ये भी तरसते हैं भूख लगती है, जब ठीक नहीं होना होता है ना तो ये भी झटपटाते क्या नहीं
तो ये सारा कुछ इस संगम युग पर हो रहा है, तो बाबा ने कहा संगम युग है छोटा सा युग, ये है धर्मायुग, इस युग को वरदान प्राप्त है कौन सा, और अव्यक्त वाणी से कौन सा,
एक का पदम गुना प्राप्त होने
का, एक का पदम गुना, और कौन सा भाग वरदान है इस संगम युग,
शुरुआत ही बड़ी अच्छी होगी, हर सेकंड हर संकल्प छठी कला का अनुभव करते हो, क्वेश्चन से शुरुआत
नहीं नहीं हाँ उसमें आएंगे, पहले ये एक जो प्रश्न पूछा है ना इस संगम युग को कौन सा वरदान प्राप्त है, अव्यक्तवाणी 18 जनवरी की।
अच्छा। हर घड़ी को सफल कर लीजिए।
18 जनवरी अभी तो हुआ, अव्यक्तवाणी बाबा की।
अच्छा, ये
नीचे वाली।
ये
तो विजय का मौसम है, संगम युग की विशेषता है, पर वरदान कौन सा प्राप्त है?
फॉलो फादर करने
का, बाप दादा को करने का वरदान प्राप्त है ना इस संगम युग को।
फॉलो फादर
लास्ट में बोला ना बाबा, तो इस संगम युग को वरदान प्राप्त है बाप दादा को फॉलो करने का, संगम युग को वरदान प्राप्त है विजय का, सफलता का, संगम युग को वरदान प्राप्त है चढ़ती कला का।
इसके साथ एक बात,
दूसरा प्रश्न है, चढ़ती कला अर्थात क्या? चढ़ती कला मतलब उससे हम आगे बढ़े, ये एक है मतलब, हाँ वरदान था। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात जो एक सेकंड पहले जो स्थिति थी, अगले सेकंड उससे हमारी स्थिति आगे हो, ये है फास्ट पुरुषार्थ। तो उड़ती कला, चढ़ती कला अर्थात स्थिति में चढ़ती कला, पुरुषार्थ में चढ़ती कला, और सेवा में चढ़ती कला, ज्ञान में चढ़ती कला, योग में चढ़ती कला, धारणा में चढ़ती कला, सेवा में चढ़ती कला, स्नेह में चढ़ती कला, सब में संबंध संपर्क में चढ़ती कला, सब सब में चढ़ती कला। अगर हमारी स्थिति ऊपर है तो सबका भला है, बाबा ने कहा सबका कल्याण है। तो चेक करो हर सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड हर संकल्प चढ़ती कला है, ये चेक करो। शुरुआती वहां से मुरली की ना, हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला। जो सुबह संकल्प था, अभी के जो संकल्प है उससे थोड़े आगे हो, थोड़े श्रेष्ठ हो।
मैं इसमें एक चीज सोच रहा हूं, ठीक है हम संगठन में होते हैं, मान लो ट्रैफिक की पुलिस छोटी सी बात, ठीक है सब खड़े हैं तो खड़े हो गए, क्या हम उस समय ये याद रखता है बाबा की श्रीमंत है मतलब, और हम सचमुच योगी हुए क्या उस समय?
वही तो अभ्यास है ना, ये एक
जिस स्टाइल पे रहते हैं,
जो आत्मा
में रहते हैं,
अकेले में जो हम है ना, वही हमारा असली चरित्र है।
असली पुरुषार्थ तो हमारा सवेरे 8 बजे शुरू होता है, उससे पहले नहीं आता है।
नहीं 8 नहीं 10 बजे,
वही 10 बजे नहीं, जब कर्म क्षेत्र में असली पुरुषार्थ,
वहाँ सारे संस्कार निकलते बाहर। बाकी 8 बजे और 5 बजे के बाद तो कोई भी योग युक्त रह सकता है, उसमें क्या है, एकदम मौन में, एकदम शांति में, एकदम अंतर्मुखी। उस दिन वरदान था ना, एकांतवासी और अंतर्मुखी। बच्चे कहते हम टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते हैं बीच बीच में समय निकालो, एक घंटा आधा घंटा एक साथ देने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में निकालो।
बड़ा पावरफुल होता है भाई, वो 3 मिनट 2 मिनट जो निकालते हैं ना, बहुत पावरफुल होता है।
पर देखो उसकी विधि ऐसी है, सबसे पहले अगर 3 पार्ट है हमारे दिनचर्या के, सुबह का है, दिन भर है, शाम का है। दिन भर का जो है ना वो लास्ट पुरुषार्थ है, सबसे पहले सुबह को पावरफुल बनाओ, फिर शाम को पावरफुल बनाओ, दोनों पावरफुल बन गए, फिर कॉन्सेंट्रेट ऑन बीच का, फिर अपने आप बीच का होगा। डायरेक्ट दोपहर का बनाने का कोशिश करेंगे, दिन वो नहीं होता है, पहले सुबह का इतना पावरफुल हो, बहुत जबरदस्त पावरफुल हो 8 बजे तक, तब कहीं उसका असर 4 घंटे तक तो पड़ेगा, 4 घंटे चलो 12-1 बजे तक, बाद में बैटरी डिस्चार्ज वापस 5 बजे तक, फिर वापस भरना है इधर, क्योंकि बैटरी जो है ना, एप्लीकेशन मोबाइल ऐसा रहता है ना जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है, और जो छोटे नोकिया वाले होते हैं ना, इतने छोटे जिसमें खाली बात करना, मैसेज और बात, उसमें बैटरी रिचार्ज नहीं होती, 2-3 दिन तक चलती है। इसके लिए हमारे मन में जो है ना, बहुत जितने ज्यादा एप्लीकेशन खुले हैं
वो सब बैटरी चालू है,
तो बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो रही है ना, कितने एप्लीकेशन चालू रहते हैं मन में, ये वो ये वो ये वो, ये व्यर्थ संकल्प, ये सबको बंद करना पड़ेगा। ये भी चलेगा अगर ज्यादा यूज नहीं करोगे तो, डिलीट कर दो एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल कर दो, आप डिलीट से वो शॉर्टकट डिलीट होता है, खाली मैनेजर में जाके अनइंस्टॉल कर दो, निकाल दो, जड़ से उखाड़ दो उसको,
मोबाइल चलाओ ही नहीं
वो तो सबसे
आज के दिन सबसे अच्छा।
पर साधनों को यूज करते, साधनों से अनासक्त, वो योगी है। बेहद की वैराग्य, ये देखो अगर किसी ने मुझे बोल दिया मौन धारण करो, तो मैं कर सकता हूँ, बहुत आसान है मौन में रहना, मौन धारण करना बहुत आसान है, किसी से बात ही नहीं करना, बिल्कुल चुप, पर सेवा भी तो करनी है। स्पीच को सिल्वर कहा जाता है, मौन को गोल्ड कहा जाता है, डायमंड साइलेंट गोल्ड है, डायमंड क्या
डेड साइलेंट
नहीं एक है बोलना जिसको चांदी सिल्वर है और मौन रहना ये गोल्ड है और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड जितना जरूरत है जहां जरूरत है कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड स्पीच जो है ना वो बहुत पावरफुल उपवास रखना बहुत आसान है सारे दिन पर कुछ खाना नहीं है कोई संकल्प ही नहीं आएगा अगर बोल दिया जाए ना आजकल उपवास है अपने आप पर किसी ने बोला कम खाना है वो मुश्किल है कम खाना है वो बोला मुश्किल है पर एकदम न खाना बहुत आसान है तो सन्यासियों ने निवृत्ति मार्ग इसके लिए तो लिया संसार से कोई लेना देना ही नहीं इसके लिए बैलेंस चाहिए ना ताली किसके लिए बचती है जो रस्ते पे चल रहा है उसके लिए बचती है जो रस्सी पे चलते हैं लोग इकट्ठा होते हैं आसपास और ताली बजाते हैं क्योंकि वहां बैलेंस है हर चीज में बैलेंस हर छोटी छोटी चीज में बैलेंस बहुत ज्यादा बोलना और कम बोलना बाबा ने बोला अति निद्रा बहुत नींद करने वाला और कम नींद करने वाला दोनों योगी नहीं है बीच का मध्यम मार्ग बहुत खाना कम खाना ये भी योगी नहीं है बहुत सोना कम सोना ये भी योगी नहीं है बहुत बोलना और बोलना ही नहीं ये भी योगी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में जब मैं इधर था 2003 में एक डॉक्टर की एक बहन वो बाबा की याद में रहती थी ऐसी तो सिस्टर बोलती सिस्टर डॉक्टर पेशेंट आया बाबा की याद में जब देखो तब बाबा की याद में पेशेंट पेशेंट दिखती नहीं थी तो ये कौन सा योग है फिर कोई दिन ड्यूटी पे आती थी तो उसका मौन रहता उस पर्टिकुलर डे उस दिन कोई बात नहीं करती पेशेंट क्यों क्यों नहीं देखा इसको क्या कहेंगे बोलो पेशेंट चिल्ला रहा है उधर सिस्टर बोल रही है उसको एक बार देखो उसको दर्द हो रहा है ऐसे तो अगर ऐसा अगर योग है तो उसको क्या कहेंगे ये इसके लिए बाबा ने हमको आंख खोल के योग करने को बोला है बाबा ने हमको चलते फिरते योगी बनने को कहा है हम योगी है योगी अर्थात हमारे कर्म में दिखना चाहिए वो नहीं तो कोई योगी बहुत अच्छे है परंतु कर्म में गलतियां होती रहती है उसको योगी कहेंगे क्या योगी है पर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती उसके सीनियर्स को डर लगता है वो करेगा कि नहीं करेगा उससे होगा कि नहीं होगा ऐसे कई लोग हैं जिनको खाली इतना ही काम है यहां से उठा के वहां रखो बस क्योंकि देख लिया इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कुछ नहीं गड़बड़ हो जाता है क्या इसको योगी कहेंगे बाबा को तो बहने बोलती थी ना हम आगे चले गए स्वरूपगंज पता ही नहीं था बाबा इतनी बाबा की याद में थे योग में थे कि पता ही नहीं चला कब आबू रोड आया तो बाबा क्या कहते थे अगर तुम योग में हो तो कभी तुमसे गलती हो ही नहीं सकती यथार्थ तो योगी अगर है तो उससे गलती नहीं होगी परफेक्ट काम उसको बराबर टाइम पर टचिंग होगा कि ये ऐसा करना है ये ऐसा करना है तुरंत पता चल जाएगा वो टाइम पर पकड़ में आ जाती है अगर गलती हो भी गई ना तुरंत पकड़ में आ जाती है वो गलती मुझे याद है मैं एक सेंटर लाइन डालते हैं हम यहाँ से उसमें एक वायर डाला जाता है पहले और फिर वो निकाल लिया जाता है बहुत पहले की बात है मैंने सेंटर लाइन डाली वायर भी डाल दिया और वायर निकालना भूल गया एक वायर यहाँ पूरा अंदर तक जाता है हार्ट तक और वॉश ग्लव निकाला बेसिन तक गया और हाथ धो रहा हूँ तुरंत मुझे स्ट्राइक हुआ कि वायर रह गया मतलब एक ऐसा होता है ना यहाँ जो प्रिक करते हैं कई बार बहुत सारी प्रिक करनी पड़ती है मैंने ये देखा है अगर मैं बाबा को याद नहीं करता हूँ और वैसे ही डालना चालू करता हूँ तो फर्स्ट प्रिक सेकंड प्रिक थर्ड प्रिक दो तीन प्रिक के बाद भी नहीं जाता है पर जिस दिन हमेशा करता हूँ पर कभी कभी भूल जाता है और जिस दिन नहीं भूल जाता ना उसी दिन दो तीन प्रिक करनी पड़ती है पर नहीं तो एक प्रिक से ही आना है तो मतलब कहने का ये है हम जब एक्यूरेट याद में है तो गलती नहीं हो सकती कर्मसु कौशलम हमारा कर्म एक्यूरेट हो परफेक्ट हो तो ही हम योगी है खाली यहाँ आके पांडवन में आके बाबा के कमरे में बैठना ये योगी नहीं है हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग हैं उनको भागना है 5 बजे 5 बजे अगर कोई काम दिया जाए ना एकदम दुखी हो जाते एकदम नाराज हो जाते अरे हम भी तो रुके हैं वो ये नहीं देख रहे, अगर बोल दिया ये करना है तुमको तो एकदम, क्योंकि उनका टाइम है 5 बजे पांडवों में, तो क्या ये योग है? फटाफट सब समेटो और आ जाओ, ये योग नहीं है। जैसे गृहस्थी का भी उदाहरण दिया जाता है, इंटरनेशनल योग है आज सेंटर पर, ठीक है। उन्होंने सोचा सारे दिन भर से अपने आप को तैयारी की कि आज शाम को इंटरनेशनल योग करने सेंटर जाएंगे, निकल रही है तो बराबर 6 बजे मेहमान आ गए 10-12। अभी बोल तो नहीं सकते, अभी दो मेथड, एक तो ये सोचेंगे क्या करे, व्यर्थ संकल्प चलाएंगे कहाँ से आ गए पता नहीं, आज ही आना था इनको पता के भी नहीं आए, मतलब खुद भी दुखी और वो आए जो लोग मेहमान जो आए उनको भी लगेगा यार क्या है हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ये तो एकदम हमारे आने से दुखी है, वो भी दुखी। एक मार्ग ये है, दूसरा मार्ग ये है, ठीक है हम आज उधर जाने वाले थे, हम आज इन्हीं की सेवा यहीं पर बाबा की याद में बैठ के करेंगे, ये दूसरा मार्ग। तो योग युक्त तो होकर उनके लिए कुछ बनाएंगे नाश्ता, तो वो और
बनने के लिए आएंगे।
हाँ मतलब दोनों मार्ग है हमारे हाथ में, दोनों मार्ग, ये करना है ये करना है। वैसे सूरज भाई ने भी एक बार एक उदाहरण दिया था, दो कुमार है, एक कुमार है सारे दिन भर सेवा करता है, ठीक है सेवा करता है, कोई उसको पूछता भी नहीं है, शाम को रात को भंडारे में जाता है, देखता है 11 बजे कुछ भी नहीं है वहां पर, रोटी है वो भी
टूटी हुई
कड़क
तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आराम से
खाएगा। तो वो बोलता है ये क्या है, ये भोजन मैं क्या इसलिए आया था मधुबन कि मेरे को कोई खाने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर, सारे दिन भर सेवा करो और खाने के लिए ऐसा पटक के चला जाता है और रात भर उसको नींद नहीं भूख के मारे। दूसरा एक आता है भाई जो भी सारे दिन भर सेवा करता है, वो देखता है वाह बाबा ने मेरे लिए रोटी रखी है वो भी तोड़ के शुक्रिया करके मस्त खा के आराम से नींद करता है, और ये दूसरे को तो नींद ही नहीं आएगी। एटीट्यूड
दृष्टिकोण
क्या है, तो चढ़ती कला अर्थात हर चीज में चढ़ती कला,
हर चीज में
एडजस्टमेंट पावर हो हमारे अंदर। एक एक यज्ञ का इतिहास देखो तो एक एक आत्मा ने कितनी सेवा की, वो भूरी दादी इधर की वो दिन में कितनी बार नीचे जाती थी, गेस्ट को रिसीव करने की ड्यूटी दी थी ना बाबा ने उसको, उस समय जाती थी दिन में 4-5 बार नीचे जाना आना नीचे जाना आना, कहीं कहीं भी कोई भी लोग जो मधुबन आए हैं ना बड़े सबसे पूछो आपको रिसीव किसने किया, सब बताएंगे भूरी दादी ने रिसीव किया। वो एक ही आत्मा बाबा ने उसको ड्यूटी दे दी, बच्ची तुमको नीचे जाके हर एक को रिसीव करना है। अभी गई और किससे गई, बस से, रोड कैसे थे तब, वो टाइम पे रोड कैसे थे यहाँ पर, मतलब एक बार जाके आना कितना थक जाते, दूसरी बार वापस जाना आना, तीसरी बार वापस जाना आना, यही उसकी सेवा थी।
लेकिन बस स्टैंड तक पैदल जाना पड़ता था बोलते,
बस बस कितनी थी, आबू में कुछ भी नहीं था, इधर जंगल था आबू पूरा
रास्ता पीछे से।
तो भगवान ने जो सेवा दी उसको दिल से किया, उसमें अगर अपना बुद्धि चलाई होती कि मैंने इसको भेजो मैं ही जाऊँगी हर बार सुबह तो जाके आई, अभी भी मैं ही जाऊँ, ये है चढ़ती कला। चढ़ती कला अर्थात सेवा में भी चढ़ती कला, एडजस्टमेंट पावर में भी चढ़ती कला, हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। खाली बाबा के कमरे में जाकर फोटो के सामने जाकर 2 घंटा बैठ गए वो योग नहीं है, हर चीज में चढ़ती कला
निरंतर
जो ये रहेगा ना उसकी वो भी होगी, अपने आप बिजुर्ग अवस्था भी होगी, हर चीज होता है उसका। जिसका कई लोग ऐसे हैं कि जिनका यहाँ योग करते पर दिन भर झगड़ा चलता है ड्यूटी में, वो ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में है ऐसा कि जो बहुत अच्छे योगी है, मतलब योगी था अर्थात यहाँ के योग लगाते हैं, पर वो आज ये डिपार्टमेंट में लोग उसे असंतुष्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट में डाला वहां पे भी असंतुष्ट है, वहां से निकाल कर तीसरे डिपार्टमेंट पे डाले, अभी सोचते बड़े क्या करे इनका, निकाल तो सकते नहीं,
बहुत धुआई मिलती है दर्शन एडजस्ट हो गए तो लोग।
हाँ इसका बेस्ट उदाहरण अगर कोई पूछे तो एक आत्मा है हॉस्पिटल में ऐसी जो मेरे लिए, तो मैं उसको आदर्श समझता हूँ, ऋषि झुकता है, झुकता है जो आत्मा झुकती है ना वो सबसे आगे रहती है। जैसे मम्मा थी ना, मम्मा जब आई उम्र में सबसे छोटी थी पर गुणों से भरपूर थी, उसके माँ ने उसको मम्मा कहा, ऐसी कुछ आत्मा इस यज्ञ में अभी भी है कि जो आते ही उनमें दिव्य गुण इतने ज्यादा है कि उनको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है,
सर्टिफिकेट मिल गया
उनको, सर्टिफिकेट अभी दे देंगे। अगर किसी ने पूछा कौन है ऐसी आत्मा तो अभी लिख के दे देंगे कि ये है वो आत्मा, क्योंकि वो अभिमान
बहुत एडजस्टमेंट है देखा
छुपाने वाली आत्मा। ऋषि अर्थात पवित्र मुरली थी ना ऋषिराज पर,
इनोसेंट जैसा दिखता नॉलेज को ले और
ज्ञानी, ज्ञानी आत्माएं दिखने में ऐसे ही होते हैं, मतलब
माना
कुछ कुछ आत्माएं बहुत पुरुषार्थ करके दिव्य गुण प्राप्त करती है, पर कुछ कुछ आत्माएं जन्म ही दिव्य गुणों के साथ होता है।
हमारा ये उनका अगर नहीं बनता ना आपस में तो बीच का रास्ता जोड़ने का दिखाता है वो, कई बार देखा हमने।
एक बार एक पेशेंट को किसी और के अंडर एडमिट था, तो पेशेंट को एकदम दूसरे डॉक्टर ने छुट्टी कर दिया, जाओ घर। वो बहुत ही मतलब दारू पीने वाला था, एकदम खराब था, बहुत ही सारी उम्र उसने दारू पी थी, ऐसा एक पेशेंट था जिसका लीवर खराब, और हमारे एक डॉक्टर ने बोल दिया जाओ इसको अहमदाबाद लेके जाओ, यहाँ नहीं रखना है। तो बोले कैसे लेके जाए, इसकी हालत ही नहीं है। तो उसको वो वहां लेके गए, वो पेट्रोल पंप है उसका, कोई उसके अंदर काम करने वाला था वहां पर। तो वो पेट्रोल पंप वाला चिल्ला रहा था, ऐसे करके भेज दिया। अभी चिल्ला रहा था वो डॉक्टर के ऊपर, पर सारा कुछ झेला ऋषि ने। फोन आया इसको, इसने सॉरी बोला, गलती हो गई, अब वापस भेजो। फिर हमारे अंडर एडमिट हुआ पेशेंट, उसने मेरे से बात किया, वो डॉक्टर ने बात नहीं किया, उसने बात किया, उसका कोई रोल नहीं था उसमें। जो पानी के अंदर घास होती है ना वो कैसी झुकती है, ऐसी इधर से पानी आया इधर, इधर से पानी आया इधर, झुकना बहुत बड़ी बात है। पेशेंट ठीक है, ठीक करके भेजा फिर।
तूफानों में भी कड़क थी
वो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं,
दांत तो कुछ नहीं होता तूफानों में, खड़े रहते
हैं। लोमती जलद घेऊनी मिरे, थोर गर्व ना धरी अभी हा स्वभाव उपकार कराता। थोर जो होते हैं ना वो गर्व नहीं होता है उनको भी, हा स्वभाव उपकार कराता, ऐसा उनका स्वभाव होता है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास लिखता है कि संत का हृदय मक्खन के जैसा है, पिघलता है वो, कड़क नहीं है वो, इतना उसमें। यही तो योग है हमारे तरह, जितना यहाँ बैठ रहे चिंतन कर रहे तपस्या कर रहे अमृत वेला कर रहे, उसका अल्टीमेट है कर्म।
कर्म
सब कुछ करते हुए कर्म में अगर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, टकराव हो रहा है, मतलब योग जीरो समझ लो। सब कुछ कर रहे पर हमारे बोल अभी भी ऐसे है कि जहां गए दो तीन आत्मा घायल, ऐसे है कुछ कि जहां भी वो जाएंगे दो तीन तो घायल करना ही है, क्या करें अभी। इसको योगी कहेंगे क्या, ये योगी नहीं।
अब उनके लिए योग करने की जरूरत है,
महायोगी। जगदीश भाई ने एक जगह बहुत अच्छा बोला है, योगी अर्थात जिसमें सब योग्यताएं अपने आप आती जाएगी धीरे धीरे, योगी में योग्यताएं आती जाएगी अपने आप आती जाएगी। जैसे सुधा बहन का है ना, वो मॉस्को गई, उसको रशिया में रशियन आती थी क्या, पर धीरे धीरे जैसे गई जब पहुंची रशिया, -27 डिग्री टेम्परेचर था उधर 1989 में जब पहुंची फर्स्ट टाइम, कुछ नहीं आता था उसको, और वो ट्रांसलेशन सीखा उसने, दादी जानकी ने बोला उसको कि रशियन सीखो, तो वो भी सीख लिया, करते 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 सेंटर खुले, कैसी बेहद की सेवाएं हुई। योग्य योगी को योग्यताएं अपने आप आती जाती है, अपने आप को योग वैसे बनाना है, बंद करके रखेंगे ना तो नहीं होगा, हर एक से सीखना है, हर एक से सीखना है। अभी हमारे पास आपके इधर के वो एक भाई एडमिट थे, अशोक भाई, वो जो ऐसे बोलते हैं ना, उसमें भी मुझे बहुत मतलब ऐसे नम्रता ऐसे दिखती है कि बहुत ज्यादा इतना भोलापन जो दिखता है ना यार, मतलब ऐसी कुछ आत्मा ऐसे मुझे लगता है इनके जैसा भी बनना चाहिए भोलापन जो होता है
अशोक टेलरिंग
भोलापन ऐसी, बाबा ने हर एक में कुछ ना कुछ इसके लिए तो सिलेक्ट किया है।
एक लालदेव भाई ने भोलापन नहीं देखा ना,
नजदीक बैठ के देखेंगे ना
ऐसे बहुत सारी है कि जिनको ऐसा लगता है इनके जैसे बनना चाहिए, मतलब हर एक से हम थोड़ा थोड़ा भी ले लें एक एक गुण तो बहुत अच्छा है, यही योगी बनने का मार्ग। चलो मुरली पे आ जाओ अभी वापस। तो उड़ती कला छोटा सा युग है, बाबा ने कहा तीनों सप्ताह यहाँ पर है, हर आत्मा में ये अभी आत्माओं को ये सब विशेषता प्राप्त है। फिर आगे बाबा ने क्या बोला है कि हम सब पर क्या है, हम सब आधार मूर्त आत्माएं हैं, सबका उड़ती कला की, सबकी कल्याण और भला के लिए हमारी चढ़ती कला ही आधार है। हमारी जो लंबे समय की उनकी प्यास है मुक्ति की, वो हमारे द्वारा प्राप्त पूर्ण होगी। उनकी जो हम जीवन मुक्ति में जाएंगे वो मुक्ति में जाएंगे। पर कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा की वो बाबा के भाव को नहीं पकड़ते, बोल को पकड़ लेते। बाबा ने जो ज्ञान की बातें बताई और जो युक्तियां बताया उनको यूज नहीं करके मिस यूज करते, वो आगे बोला एडवांटेज। पर वहीं पर बाबा ने बोला ये होशियारी करते हैं बच्चे, तो उसमें बाबा ने फिर उदाहरण दिया, जैसे बाबा ने ज्ञान के राज जो बताया है कि सभी महारथी नहीं बनेंगे,
मास्टर
बनने के लिए ये सारी राज सुनाए, तो सभी महारथी नहीं बनेंगे, सब राजा ही नहीं बनेंगे, जब माला में नहीं आएंगे, तो इसको भी बच्चे उल्टे रूप से ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण बाबा ने बताया माया के बारे में कि बाबा आपने तो कहा है माया बहुत, माया दस्तूर है, माया आएगी, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, महारथियों को भी नहीं छोड़ा, तो हमने आगे हमारे पास आई तो क्या हुआ, हम तो ये है सब, तो क्या फायदा, क्या हुआ।
लेकिन ये भी तो बोला है ना कि माया आएगी हार नहीं खाना, ये बड़ी भगवान
बोला। अभी इसकी लिस्ट निकालो कि कौन कौन से शब्दों को बच्चे उल्टा ले लेते बाबा के। एक तो बाबा ने ये माया का उदाहरण दिया, दूसरा
किसी को ब्रेड खाना है,
हाँ, वो तो खैर दूसरी
ना, नहीं बाबा ने कुछ बोला है। जैसे एक हमारे पास एक बहुत साल पहले एक डॉक्टर था, वो मुरली क्लास में हमेशा पीछे बैठता था और सोता रहता था हमेशा, तो उसको श्रीमंत सर उठाते थे वो क्लास में, शाम का क्लास चलता था, और रोज तो बोले बाबा ने, उन्होंने उसने कोटेशन किया बाबा का एक महावाक्य, बाबा ने एक बार मुरली में कहा अव्यक्त बाबा के कि सामने वाले बाप को देखते हैं और बाप पीछे वालों को देखता है, देख कोट किया कि बाबा नहीं बोला है कि बाबा पीछे वालों को देखता है। तो ये वही होगा ना, बाप तो तुमको एडवांस में लेके जाने के लिए सुनाते हैं, पर बच्चे उल्टा एडवांटेज ले लेते हैं। अब बाबा की भाव कौन सा है, मतलब जैसे टेररिस्ट भी होता है ना, टेररिस्ट भी गीता को कोटेशन करता है, सबको मारने वाला देखो कृष्ण ने तो सिखाया था अर्जुन को मारो, हम भी तो मार रहे हैं, इसको क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे, मेरे
कुछ नहीं कह सकते, उल्टा भाव को समझा ही नहीं। जैसे उस दिन बाबा ने बोला मुरली से विकर्म विनाश नहीं होंगे, बोला नहीं,
लेकिन वो सबके लिए नहीं, भाव दो चीज है ना,
हर मुरली देश काल परिस्थिति अनुसार चलती है, कौन सा कौन सामने बैठे उस अनुसार चल रही है, उसको उसी भाव से समझते हैं।
मुरली नियोग से कम नहीं है, लेकिन अगर
एक और बीच अभी हफ्ते में ही है ना कि ज्ञान की मस्ती तो रहती है
योग,
लेकिन
धारणा नहीं, कोई ना कभी बोलेगा बिना इस ब्रह्मा के तो तुम मेरे पास पहुंच मुझे याद नहीं कर सकते। कोई कोई बच्चे हैं ना वो जो कहते हैं हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो बाबा उस समय ब्रह्मा की महिमा करते हैं। कभी कभी ब्रह्मा में चिपक रहे तो बाबा कहते हैं इसको याद करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होंगे, कुछ नहीं होगा
तुम्हें।
तो ऐसे वो जो बोल रहा है ना वो किस भाव से बोल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है, क्यों बोल रहा है। कभी कभी बोलते चित्रों की जरूरत नहीं है तुमको, कभी बोलते हाँ तो कभी चित्रों की इतनी महिमा करेंगे, इतनी महिमा करेंगे कि चित्रों पर समझाओ, चित्रों के सामने बैठो और नशे में हो जाओ और सुबह उठ के अनुभव सुनाओ, ऐसे सब चित्रों के बारे में। कभी बोलते चित्र वित्र बाबा को पसंद नहीं, हाँ इतना बाय इतना, अभी भी तो था ना 32 गुणों वाला शिव बाबा का चित्र समझाओ, अभी था ना
महिमा की होती है।
हाँ, और कभी बोलते हैं कि बिंदु को सामने रख के बाप को याद किया जाता है कि कभी
अभी
मम्मा बाबा को सामने फोटो रखते हो भक्ति मार गए क्या,
मतलब जैसे समय बदलता है ऐसे शिक्षाएं
सामने ऐसे बैठे होंगे, जैसे जो भक्ति करने वाले उनसे अभी भक्ति छुड़ानी है तो ऐसे शब्द बोलेंगे भक्ति के बारे में कि उनको भी लगे भाई छोड़ो भक्ति एकदम ही खराब है,
आज भी बोला ना कुछ ज्ञान से संबंधित, जिनको ज्ञान समझाना नहीं आता वो अज्ञानी है।
ज्ञान नहीं है उनमें भक्ति है।
अभी कहाँ बोल रहा है कि ज्ञान तो होता है, बच्चा भी समझा सकता है।
तो बाबा ने कहा है बाबा के जो भाव है उसको समझना है, भावार्थ और शब्दार्थ दो बातें होती है, भाव को भी समझना है उसके शब्दों को भी समझना है, वैसे तो दोनों बातों को समझना है। पर बच्चे उल्टा एडवांटेज ले लेते हैं, बच्चे फिर आगे बाबा ने बोला है ना कि ये इसके आगे की पॉइंट की बाबा ने तो ये बोला है कि भाई विजयी बनो, कल्प कल्प के विजयी रतन है, ये स्मृति भूल जाती है बच्चों को, ये स्मृति याद नहीं रहती है। पर बाबा ने तो क्या कहा है, बाबा ने हारने के लिए थोड़ी ना बोला, माया तो
आएगी
वार करेगी, आपको हारने का
नहीं, आपको हारने
का, अगर दुश्मनी नहीं तो विजय कैसे कहेंगे, सामना ही नहीं करेंगे बिना उसके थोड़ी ना विजय का, बिना मेहनत के। फिर आगे भी बोला ना बाबा ने मेहनत के बारे में कि आजकल भी दुनिया में तनख्वाह चाहिए पर मेहनत नहीं करना चाहते, महारथी की लिस्ट में आना चाहते पर मेहनत नहीं करना चाहते, महारथी की महानता
स्टेज बनी बनाई चाहिए,
स्टेज बनी बनाई चाहिए, करते नहीं है।
एक ऊपर पॉइंट रह गई भाई, एक ऊपर पॉइंट रह गई, अगर ये स्मृति रहे ना कि चढ़ती कला से हम विशेष
ये अटेंशन अगर सदा रहे तो आलस से अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाए। ये अगर स्वतः निरंतर अटेंशन रहा, और इसका भी कारण बताया कि ये क्यों करते हैं, अपने स्वभाववश स्वभाववश इस तरह का सारा करते हैं कि बाबा के भाव को उल्टा कर लेते हैं। फिर आगे बाबा ने वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आगे का, उसमें वही सारी बातें बताई है कि कुछ कुछ बच्चे हैं जो इतने समझ बाबा को भी समझाने लगते हैं ज्ञान, अपनी समझ का अहंकार हो जाता है उनको, और फिर पर अंदर में ऊपर से दिखावा, अंदर में खाली खुशी नहीं, शक्ति नहीं, धोखा और ज्ञान, ये सब
डिससर्विस
खुद ब्राह्मण अज्ञानी आत्माओं की और ब्राह्मण परिवार दोनों की डिससर्विस, खुद भी डिससेटिस्फाई और दूसरे भी असंतुष्ट, परंतु अपनी समझ को सिद्ध करके बताते हैं, अच्छी तरह सिद्ध करके बताते हैं अपने हम राइट है, ये बाबा को भी सुना देंगे कि बाबा की एक मुरली में बाबा ने बोला था, बाबा को भी बताते ये डेट को आपने ये कहा था बाबा, भगवान को भी उसी का ज्ञान सुनाते हैं, भूल गए क्या आपने तो कहा था उसी अनुसार मैं कर रहा हूँ।
पिछले बार बोला था ना अपने जैसा भुलक्कड़ समाज समझते हो क्या, भूलने वाला
मुझे अपने जैसा भूलने वाला समझते हो,
थोड़ी दिखाई बाबा ने वहां पर थोड़ा।
फिर बाबा ने आगे प्रश्न पूछे कि खुशी सदा क्यों नहीं रहती, जो पुरुषार्थ उमंग उत्साह पहले था, पहले कैसा माया की रुकावट थकावट कुछ नहीं महसूस करते थे, जो भी युक्तियां बाबा बताते थे पुरुषार्थ की लग जाते थे उसकी लगन से करने में, अभी क्यों नहीं होता रहता, उसका कारण पूछा। और बाबा ने आगे बोला बच्चे पूछते हैं कि बाबा योग नहीं लगता कारण क्या, क्या करूं योग नहीं लगता क्यों, क्या करूं हिसाब किताब चुक तो नहीं होते क्या करूं, दो प्रश्न पूछे। बाबा ने बोला अरे रिवाइज कोर्स भी हो गया, अभी रियलाइजेशन कोर्स भी चालू है, कि बाबा ने बताया नहीं पहले, जो अभी पूछते हो पहले दूसरे कोर्स की बातें अभी पूछते हो,
कुछ भी रहा नहीं है,
सब बता के हो चुका है बाबा ने सब बता दिया है। फिर उसका मेन कारण है मनन, सारी मुरली अभी यहाँ पे आके रुकती है
मनन,
ये सारा जो कुछ हो रहा है इसका कारण है कि मनन नहीं करते, इसके लिए कमजोर है, इसके लिए शक्तिशाली नहीं है,
कमजोर हो जाते,
सुनने के साथ साथ मनन करो, बुद्धि शक्तिशाली मनन से होगी बाबा ने कहा। ये सारा जो कुछ हो रहा है ना अंदर से धोखा दिखावा समझ का अहंकार, मनन मनन चाहिए, मनन के बगैर खाली मुरली सुनकर खुश हो जाना ये कनरस भक्ति है, वो भी बहुत अच्छी मुरली थी खुश हो गए, कितने समय रहती है खुशी गेट के बाहर निकलने तक, हालात मनन चाहिए, मनन गहराई से मनन चिंतन बहुत अंदर ही अंदर। ये अभी जो नीचे ये ग्रुप चल रहा है ना,
हाँ।
बैठे थे उसमें जो मेन भाई सामने बैठा था ना, उस दिन ओपीडी में आया था वो,
अच्छा।
उसने ऐसी पावरफुल पॉइंट सुना थी मुझे, वो सामने जो बैठा था ना जो सबका क्लास ले रहा था
पुराना,
हाँ वो बहुत पुराना भाई है, वो मुझे पूछ रहा था आप क्या पुरुषार्थ करते हो यहाँ बैठे बैठे, पेशेंट देखते देखते ये अपनी बीमारी छोड़ के यही पूछना चालू कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था आंतरिक पुरुषार्थ बहुत लंबे समय से चालू था, वो तो टाइम पर वो उड़ गया, लोगों को लगा अभी अभी पुरुषार्थ कर रहे क्या 68 69 में, पर आंतरिक पुरुषार्थ कितना लंबे से चालू था वो किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि महान आत्मा अपना पुरुषार्थ बताते थोड़ी था किसी को, वो अपनी भावनाएं वो नहीं बताता, वो इतनी क्योंकि उनको उसके उतना लेवल का कोई मिलता नहीं है। वो आंतरिक पुरुषार्थ तो चालू ही होगा ना, समेटने का कितना लंबे से चालू होगा, वो तो लास्ट 2 साल में अपने को इतना समेट लिया कि उड़ गई, ये बात उसने मुझे बताई बैठ के। तो ऐसा है, तो हमारा आंतरिक पुरुषार्थ जो मनन चिंतन ये सारा जो है ना इंटरनल है, ये यहाँ बैठ के नहीं होता है, ये तो कोई एक चिंतन करके आया और सुना है, वो एक अभी मैं सुना रहा हूँ, ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, पर ये आपका चिंतन नहीं है, आपका अपना चिंतन होगा, एक मेरा अपना एक चिंतन होगा, आपके चिंतन का मैं आधार ले सकता हूँ, फिर भी वो मेरा चिंतन नहीं बनता,
नहीं बनेगा,
पहले आधार तो लेना ही है,
आधार लेना है
और फिर हमारा उसके ऊपर बिल्डअप करना है, हमारे उसमें व्यूज क्या है, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में।
ये तो ऐसे ही है जैसे कोई गीत गुरु बना रहा है ना, तो हमें भी अपने पसंद का याद आ जाता है, ये ऐसे है इस तरह,
ये भी जरूरी है, संगठन भी जरूरी है, एकांत भी जरूरी है। तो सारी मुरली यहाँ खत्म हुई, फिर पार्टियों से मुलाकात, निश्चय के बारे में पहला पॉइंट, अगर स्वयं में निश्चय है, कोई भी कार्य करते स्वयं में निश्चय है, बाप में निश्चय है, ड्रामा में निश्चय है, तो असफलता नहीं हो ये वो नहीं करता, हो ही नहीं सकता है
सफलता,
असफलता नहीं, असफलता ना हो ये
हो नहीं सकता।
और बाबा ने उसमें और एक जो निश्चय बुद्धि बच्चे वो साक्षी होकर अपना और दूसरों का पार्टनर, सफलता ना हो
ये हो नहीं सकता,
ये हो नहीं सकता,
असफलता हो
ये हो सकता, नहीं वैसा नहीं, बाबा ने सफलता के बारे में, सफलता ना हो ये हो नहीं सकता, मतलब निश्चय बुद्धि की सफलता है ही,
मतलब यहाँ बाप को समझना है
बस, दोनों इधर से ले लो चलो,
ये शब्दार्थ
साक्षी होके देखने को बोला, स्वयं का पार्ट और दूसरे का पार्ट, क्या क्यों मैं नहीं जाऊं ये। फिर दूसरा बाबा आदि रत्नों से मिले, आदि रत्नों को क्या याद दिलाया, उनका भाग्य,
भाग्य
कि जो भाग्य उनको प्राप्त है वो बाकी सारा भाग्य सबको प्राप्त हो सकता है, पर ये भाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है उनको, कल कोई में कोई और कोई में कोई, अभी तो खाली वो गाते हैं, स्वप्न में भी जो सोचते हैं वो आपने अनुभव किया प्रैक्टिकल में, बाबा ने उनको कहा वो भाग्य, वो तो है, पर बाबा इसके लिए तो हाथ रखा ना उस दिन साकार वालों के ऊपर,
हाथ घुमाया था फॉलो करो,
हाँ ऐसे थोड़ी ना हाथ घुमाया,
देखा बोला पहले नहीं दूसरों को भी रखा लेकिन बाद में रखा, पहले तो पुराने में रखा,
पहले पुराने वालों को बगैर कंडीशन के रखा लेकिन पीछे जो है
कंडीशन फॉलो
करने वालों के ऊपर,
चलो नहीं दोनों के ऊपर और फॉलो करने वालों को अलग से भी बुलाया। तो बाबा ने उनको बोला है कि अगर तुमको कुछ याद नहीं आता है खाली इतना भी याद रहो कि हम साकार की पालना लिए, ये भी सुमिर अगर करते रहो तो नशा रहेगा, नशा ही खुशी है, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण
जीवन ही
नहीं, खुशी से साथ जोड़ दिया। फिर आदि रत्न अपने भाव के देख देख के खुश होते रहो। फिर लास्ट था विदेशियों के लिए, लास्ट करेगा विदेशियों से बाबा मिले, आज की मुरली में जैसे एक वाक्य है ना, बहुत अच्छा वाक्य आज की मुरली में, कि जो पिछाड़ी में आने वाले हैं वो भी तीखे जाएंगे, वो भी आगे जाएंगे, गणिकाएं भी आगे जाएंगी, पर बाबा ने यही बात एक अव्यक्त वाणी है जिसमें साकार जो आदि रत्न है ना उनके लिए बोला है, उसमें ऐसे बाबा ने बोला है कि जो भी आगे भल आगे आने वाले आपसे आगे जाएंगे,
आगे
आने में लास्ट में आने वाले आप आदि रत्नों से भी आगे जाएंगे, लेकिन डैश 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 लेकिन बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है, बाप दादा को पुरानी वस्तु का वैल्यू पता है।
अभी जमुना प्रसाद भाई ने 2 दिन अनुभव सुनाया वहाँ ज्ञान स्वरूप, सुनने जैसा क्या सुनाया जो
मैंने आधा सुना आधा छोड़ दिया, फिर कुछ आधा ही सुना थोड़ा,
मैं एक पार्ट सुना है दूसरा पार्ट रह गया है,
अनुभव ऐसी एक चीज है ना, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना, वो ये एक है ज्ञान जो बुद्धि से समझ रहे, ये सबको समझेगा जरूरी नहीं है,
हाँ
एक ये कोई भी दादी का अनुभव, चाहे गंगे दादी का अनुभव, चाहे वो संतरी दादी का अनुभव, ध्यानी दादी का अनुभव, भोली दादी का, जिसको हमने देखा भी नहीं है, ऐसी दादी है कि दादू दादी आए, वो सरला दादी का अनुभव, वो रुक्मिणी दादी, रुक्मिणी दादी का अनुभव सुना, ऐसा जबरदस्त है, बाप रे बाप, आंखों से आंसू आ जाए ऐसे अनुभव है,
रुक्मिणी दादी का,
रुक्मिणी दादी का, जो कि ये ऑलराउंडर दादी का, ऑलराउंडर दादी की बहन, दोनों बहनें थी ना रुक्मिणी दादी, ऑलराउंडर दादी, दो दो बहनें थी, कहते वो दोनों लड़कियां भागी रात को 1 बजे पहुंची हैदराबाद, फिर वहां से वापस वो पिकेटिंग और पिकेटिंग से वापस घर, फिर कैंट में गई, यहाँ गई वहां गई, कितना अनुभव है, जबरदस्त अनुभव है। एक दूसरा वो एक दूसरी एक दादी है प्रकाश इंदिरा, जो अभी है ही नहीं शायद, वो सहारनपुर का ही सेंटर पे थी, उसका भी कितना जिसमें अनुभव में इतना सुंदर सुना है, ये तो दादी प्रकाश मनी की वॉइस में आवाज में एक अनुभव, कि वो जो कराची में थे ना, सारी बहनें रहती थी 300 लगभग, तो सब लोगों को अलग अलग ड्यूटी दी गई थी, पहरे पे रहती थी बहनें ही पहरे पे रहती थी, सब कुछ बहनें ही करती थी। तो एक दोपहर का एक बार की बात है कि सारी बहनें ऐसे पहरे पर थी, तो एक दादी थी प्रकाश इंदिरा जिसका नाम था, तो उसका लौकिक भाई उसको मिलने आया, मिलने आया पर कुछ और इंटेंशन था उसका, तो बाहर कार खड़ी थी गेट के बाहर, वो उससे मिलने आया, वो बैठा तो बोला मुझे बहन से मिलना है, तो ठीक है बहन मिलो, मीटिंग रूम थी एक छोटी, वहां बैठे, वो आई, उधर से 2-3 लोग आए, सब सोए हुए थे, वो जैसे निकली उसने उसके बाल पकड़े और घसीट के लेके जाना चालू कर दिया, कार में उसका पति बैठा था, और जैसे ये बहनों ने देखा पहरे पे, एक ने सीटी बजाई, दूसरे ने सीटी बजाई, सीटी सीटी सीटी, सबके सब आ गई बहने, बोले छोड़ो छोड़ो, वो तब तक गेट के बाहर लेके गया था पर कार में अभी तक नहीं बैठा था, तो उसको पकड़ के चल घर पे, ऐसे कैसे आ गए इधर। तो ये बहने सारी की सारी इकट्ठा होगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो भी बहुत जोश में था, उसका पति भी आ गया तब तक, हम तो लेके ही जाएंगे इसको, छोड़ो छोड़ो, वो भी छोड़ो छोड़ो, ये भी छोड़ो छोड़ो, फिर उसको इतना गुस्सा आया वो गिर गई वो बहन, तो उसके पति ने ऐसा दंडा लिया और ऐसा जोर से मारा जो दादी प्रकाश मनी को यहाँ लगा और खून आने लगा, तो डर गए दोनों, पुलिस केस कर दे तो, और दोनों भागे। फिर दादी बोलती है कि हे प्रकाश इंदिरा, प्रकाश मनी के खून ने तेरा कल्याण कर दिया।
डेंजर सीन तो,
डेंजर मतलब डेंजर सीन है सारा, एक एक हिस्ट्री देखो, वो 12 साल जो गुजरे 1938 से लेके 1938 से लेके 1950 तक वहां रुके, वो जो 12 साल है हर एक का अनुभव अलग 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 है उसमें, कितनी उन्होंने क्या क्या किया है हर दिन उसमें बोलते हैं, अलग अलग अनुभव उनको हुआ है,
कहां से कलेक्ट किया,
ये तो है ना सब इधर उधर बुक्स में है कहां, वहां और वहां से आने का अनुभव, वो अभी तो ये बाकी लोग तो आए नहीं है वहाँ, ये जगदीश भाई ये तो सब बात की बात है, आनंद किशोर ये सब वो पहले भाऊ भाऊ है और ब्रह्मा बाबा है, वहां के इन दोनों के साथ का बस, वो 12 साल उनके कैसे गुजरे, और फिर जो आने का जो सीन है उसमें भी इतना पावरफुल सीन है, वो भी कितना कैसे आए, 5/5/50 को इधर पहुंचे, 5 तारीख 5वां महीना 1950 माउंट आबू रीच हियर, पर वो जो जर्नी है, इतना सारा सामान लेके वो कलेक्टर के पास गए, वो मजदूर लोग, वो आते समय वो उल्टिया क्या 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 क्या, एक एक ने ऐसे ऐसे अपने अनुभव सुनाए, तो वो मतलब वैसे रोमांच खड़े हो जाए ऐसी चीज,
मनोहर दादी का भी अनुभव जो
है, मनोहर दादी का, अरे बाप रे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त,
बहुत मार खाया, कहां से लटके, कहां से मुरली,
मार न खाने वाले कोई बहुत ही कम है,
उनका भी है, दोनों ही बहुत है,
मार तो लग रहा है सबने खाई होगी,
नहीं गुलजार दादी क्योंकि ऑलराउंडर दादी जो थी वो ऑलराउंडर दादी ने खुद ही अपनी बच्ची को लेके गई, 9 साल की जो बच्ची थी शोभा, मतलब गुलजार दादी, उसी को खुद ही समर्पण करा दिया ना, क्योंकि वो खुद ही इतनी निश्चय बुद्धि थी, और उसका सुदेश बहन ने अपना क्या नाम है पुष्पा बहन है पांडव वर्ग में, उसका पूरा लिखा है ऑलराउंडर दादी के बारे में, इतना सुंदर लिखा है ऑलराउंडर दादी, एक एक बात लिखी है उसमें कि वो जो दादी थी ऑलराउंडर दादी अभी कितनी सीनियर हो गई, फिर भी हर बात दादी प्रकाश मनी को पूछ के करेगी, उसका कमरा इधर, बाथरूम बहुत दूर था, कई लोग बोलते थे बाथरूम यहाँ बना लो, पर वो नहीं, जब दादी यहाँ आएगी उससे पूछेंगी तब करेंगी। फिर दूसरा रिगार्ड, एक दूसरी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो भी कपड़े थे ना वो उसके वो तकिया के नीचे रखती थी प्रेस के लिए, पर बाकी बहनों की लेके जाती थी, पर खुद मतलब दूसरों को पालना ऐसे देती थी पर खुद उसके नीचे रखती थी, और एक ही घर में गुलदार दादी भी रह रही है और ऑलराउंडर दादी भी है, पर मोह बिल्कुल नहीं है। मतलब उसको दूसरे को ऐसा लगता ही नहीं कि ये माँ बेटी,
अलौकिकता,
अलौकिकता उसमें एकदम एकदम अलौकिक। उसका एक बोल है कि लौकिक वालों से क्या संबंध रखना, उसने बोला है उसने खुद के वाक्य ऑलराउंडर दादी के, जैसे हम थूक देते हैं ना तो थूक को चाटते हैं क्या कभी। उसने सिंधी भाषा कभी प्रयोग नहीं किया बाद में ज्ञान में आने के बाद,
बहुत बड़ी बात है जो हम,
क्योंकि सिंधी भाषा बोलना ये तो एक है जिस बैकग्राउंड से हम आए ना, यहाँ आने के बाद में वो खत्म हो चुका है। तो उसमें बोला है कि मैं सिंधी भाषा अगर बोलूँ तो मुझे सिंधी लोग याद आएंगे, सिंधी भाषा बोलूँ तो वहाँ का परिवार याद आएगा, सिंधी भाषा बोलूँ तो वहाँ का सब कुछ याद आएगा, तो क्यों बोलूँ मैं। तो बाबा ने बोला मना कर दिया, तो वो है मतलब कितने सारा एक एक। अभी उसने भी शरीर छोड़ दिया 93 में, मतलब एक एक करके। रुक्मिणी दादी का देखो वो भी कैसा है, उसका तो बहुत ही जबरदस्त। मतलब बाबा इसके लिए तो ऐसे ही थोड़ी ना हाथ रखते हैं, वो बोला ना तुम लोगों को जो भाग्य प्राप्त है बाकी आने वालों को सब भाग्य प्राप्त होगा, ये
नहीं मिलेगा,
ये नहीं मिलेगा।
आज बोला है ना,
कल कल की बोली,
नहीं हाँ कल वाली।
बाबा ने एक मुझे में बोला जैसे स्थापना के ग्रुप में जो श्रेणियों का ग्रुप निकला, वैसे अभी हम तुम्हें ऐसा एक ग्रुप निकली
निकले लास्ट जैसे मरेंगे मिटेंगे सहन करेंगे घर छोड़ेंगे पर पवित्रता के व्रत को नहीं छोड़ेंगे, पवित्रता की कसम को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे अभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप निकालो जो मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान हो, ऐसा एक ग्रुप निकालो जो सहन करेंगे तो पुरुषार्थ में कुछ भी हो जाए आगे बढ़ेंगे। बाबा ऐसा ग्रुप चाहते हैं, ये लास्ट संडे की मूवी,
ये पिछले संडे की।
ऐसा शेरनियों का ग्रुप निकालो बाबा कहते हैं, जैसे वो एक अवतार जब उतरता है तो कितनी बड़ी क्रांति होती है, जब इतने सारे अवतार उतरेंगे तो क्या क्रांति हो जाएगी संसार में। लास्ट संडे की मूवी पार्टियों से मुलाकात, साक्षात्कार का पार्ट बहुत ज्यादा होगा, जैसे पहले जो भी आता था वो उनकी धुनी बज रही है, जो आ रहा है उसको साक्षात्कार हो रहा है। किसी को यहाँ पर ज्योति बिंदु दिख रहा है, जैसे रुक्मिणी दादी अपना अनुभव सुनाती है कि वो छोटी 11 साल की बच्ची आके बैठ गई, उसका उसके पिताजी की डेथ हुई थी तो बहुत दुखी रहती थी, वो आके बैठ गई और वो ओम की ध्वनि चली और उसको पता नहीं क्या हो गया, सब लोग उठ के चले गए, वो खत्म हो गया सत्संग। फिर बाबा आके बोल रहे बच्ची बच्ची, तो उसको लगा जैसे आवाज आसमान से आ रही है, वो बोलती मुझे ऐसा लगा। फिर बाबा ने जब जोर से बोला तब वो जागी और उसने अनायास शब्द निकले बाबा उसको देखकर, और उसको तो बहुत ज्यादा प्यार था क्योंकि उसके अपने पिताजी ने शरीर छोड़ा था, तो उसको बाबा यहाँ मिल गया। तो ये साक्षात्कार का तो इतना पार्ट है, इतना साक्षात्कार चला कि चंद्रमणि दादी बोलती है कि एक बहन थी अंबाला की ध्यानी ध्यानेश्वरी, उसको रखा गया कि वापस भेजने को लोगों को, जगह नहीं है घर जाओ कल आना, कृपया करो आज जगह नहीं है कल आना, क्योंकि कौन नहीं चाहता कृष्ण का साक्षात्कार। कृष्ण तो ऐसी चीज है एक संसार में आकर्षण उसका इतना है, हर एक चाहता है कि हमको मात्र एक बहन को नियुक्त किया गया घर भेजने के लिए, जगह नहीं है एकोमोडेशन प्रॉब्लम कल आना। उनको तो कुछ पता ही नहीं था, बस मैं आत्मा हूँ मैं ब्रह्म हूँ, इतना ही ज्ञान था उनको, ये पता ही नहीं था कि इसमें कोई आ रहा है, उनको लगा ये ब्रह्मा कर रहा है। पर जब ब्रह्मा बाबा कश्मीर चले गए लंबे समय के लिए तब भी साक्षात्कार होने लगे, तब उनको लगा अरे ये कौन कर रहा था, वो तो अब उधर बैठा है फिर भी साक्षात्कार हो रहे, तब उनको कुछ थोड़ा समझ में आया कि ये कुछ और भी है। कितना समय तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है, बस देखा और साक्षात्कार हो रहे हैं उसको देख के, किसी को कृष्ण दिख रहा है किसी को ये दिख रहा है किसी को कुछ दिख रहा है।
उस समय दादी का अनुभव है कि उस समय ज्यादा ज्ञान नहीं है,
ज्ञान है ही नहीं
उसको,
वो ये रुक्मिणी दादी को ज्ञान कैसे सिखाए बाबा ने, तीन चित्र दिखाए, एक ये क्या एक पाताल लोक, एक मनुष्य लोक, एक स्वर्ग लोक।
हाँ
ये पहले यही था ज्ञान, तो ये तो चित्र अभी बने, तब तो मुरली शब्द भी नहीं था, वाणी शब्द था,
वाणी
चलती थी बाबा की। तो कैसे सिखाया उसको, देखो ये है स्वर्ग लोक जिसमें देवता है, ये है मनुष्य लोक जिसमें कृष्ण है अर्जुन को, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहा है, और ये है पाताल लोक जिसमें वो गिरगिट कछुआ प्राणी। तो बोले तुमको इसमें जाना है या इसमें जाना है, अगर तुम ज्ञान में नहीं चलोगे तो इसमें जाओगे सीधा पाताल में। तो बोले डर गई मैं नहीं जाऊंगी मुझे तो इसमें जाना है। तो बोले ठीक है तू आ जाओ।
ऐसे
वो एक गोल्डन चित्र था ऐसे इस पे यही था चित्र कहाँ से था। और बाबा तो चित्र समझाते थे ऐसे चित्र निकालते थे हाथ से ये आत्मा है ये मनुष्य का चित्र ये आत्मा है तुम आत्मा हो बस बोल दिया और स्थित।
लेकिन सबसे वंडरफुल बात है कि मम्मा को कोई साक्षात्कार।
हाँ पर मम्मा थे दूसरों को हुए
मम्मा से हुए लेकिन मम्मा को नहीं हुआ
मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ।
सबसे
मम्मा कैसे तैयार आत्मा थी ना उसको ये एकमात्र यज्ञ है ऐसा कि जहाँ पर कि मम्मा को अपनी माँ ने मम्मा कहा ये एकमात्र ऐसी संस्था है कि जिसमें ब्रह्मा बाबा अपनी पत्नी को बच्ची कहता है पहली बार।
और वो पत्नी जो है उनको बाबा कहते हैं
बाबा कहते हैं ये। और बाकी इधर भी हुआ है जैसे रामकृष्ण परमहंस और उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा है पर बच्ची नहीं कहा उसने उसको ये तो उसे बहुत ही आगे कहते हैं
कुछ माना बहन मान लिया लेकिन ऐसे नहीं हुआ
ये नहीं माना ये तो बहुत ही ऊपर की स्टेज है।
तो ये भी विशेष घटना
ये भी वैसे
विशेष घटना ये भी एक विशेष घटना। तो ये अब कितना टाइम
गरीब
अरे वाह 50-10 मिनट है चलो एक हफ्ते का मुरली थोड़ा
एक हफ्ते
रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो एक एक प्रश्न का उत्तर बताओ नास्तिक कौन कौन है उसी मुरली से 10 पॉइंट एक शुद्धाभिमान में रहते हैं दूसरे जो ईश्वरी खायते के खिलाफ है वो नास्तिक है दो तीन जिनमें भूत है वो नास्तिक है जो लड़ते झगड़ते हैं वो नास्तिक है जो ये समझते हैं हम ब्रदर्स नहीं है वो नास्तिक है जिनमें दिव्य गुण नहीं है वो नास्तिक है
चिंतन प्रदर्शन करते हैं
उसमें नहीं है वो पॉइंट पर वो भी
होता है
जो और एक मुरली की शुरुआत जहाँ से है ना बाप है सुप्रीम टीचर सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु जिनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता वो भी नास्तिक
वो भी नास्तिक है
शुरुआत ही वहां से कहाँ हो
मंडे
का हमारा ट्यूजडे से बताओ वो कर लिया था हमने डिस्कस उस दिन मंडे का
मंडे को किया था ना
हमने और पावरफुल पॉइंट बता दो बस अरे ये कल की मुरली एक वाक्य भूल गया मैं बाबा का हर बोल हर बच्चे के तीनों कालों का
कल्याण
करता है इसके लिए उसका नाम विश्व कल्याण
इसलिए वो विश्व कल्याण
हर हर बोल उसका हर बच्चे का तीनों हर बोल में तीनों काल का कल्याण समाया है इसके लिए उसको विश्व कल्याण कहते हैं।
तुम व्यापारी
उन्नति का आधार
नहीं बाबा ने कहा शरीर दुनिया में प्रबंध करते हैं शरीर की उन्नति का है ना और यहाँ आत्मा की उन्नति का बाप प्रबंध करते वो बात ध्यान रखने बिल्डिंग
चलो वही बोल रहा हूँ पांडव भाव गवर्नमेंट की सेवा याद नहीं करना फ्यूचर की आँख में रखना
आगे के लिए
आपको
समय वेस्ट नहीं करना
टाइम वेस्ट नहीं करना ये जो है ना भविष्य की आश नहीं रखना ये एक चिंतन का टॉपिक है ये अलग से टॉपिक है भविष्य की आश ना रखना। हाँ वही कौन कौन सी हम कभी और डिस्कस करेंगे अभी और थोड़ा और क्या था पॉइंट मुश्किल सहज हो जाएगी और
निर्भय और हर्षित हो
सदा निर्भय और हर्षित रहने के लिए क्या करो बेहद के खेल को सदा साक्षी
तो हलचल में नहीं आएगी
तो हलचल में नहीं आएगी नहीं वो दूसरा दो मिला दिया आपने कैसे रहेगी
क्या करना
खुशी कायम कैसे रहेगी
बेअंत खुशी कैसे रहेगी बेअंत
शरीरी बन का अभ्यास करो
जो देही अभिमानी बनते हैं
हाँ वही दान करते
हैं और दान करते हैं और कराते हैं दान करके दूसरों को कराते हैं जो बात सुनाते हैं उसको दान करते हैं कराते भूतों का
बहुतों का भूतों का लेकिन भूतों का भी
भूत वाले
और बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा को याद करने को फुर्सत नहीं है शर्म नहीं आती कहते हुए
ये लास्ट
आत्मा कहती है बाबा याद करने को फुर्सत नहीं है शर्म नहीं आती है कहते हुए। और शिवानंद भाई और क्या था? निगेटिव और व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन करके विश्व
कल्याण,
विश्व का कल्याण करो,
विश्व परिवर्तन,
विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाओ।
और ये लाइट हाउस बंद,
लाइट हाउस याद कर, लाइट हाउस बंद, मन बुद्धि से फैलाओ,
मन बुद्धि से।
और कर बोला
हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस है, तो कर्म योग,
हर कर्म योग।
फिर वो संकल्प की इकोनॉमी का अवतार,
संकल्पों की इकोनॉमी के अवतार
नहीं, कर्म करते हुए हर कर्म में कर्म योग का अनुभव करना,
कर्म और योग का,
कर्म करते कर्म और योग का अनुभव करना ही कर्म योग। और पॉइंट था मुरली का पॉइंट, अंदर का पॉइंट है, बिना याद किए हुए कर्म बाबा की याद नहीं है।
और आज वरदान में बहुत अच्छी एक बात थी,
कल का वरदान भी बहुत बढ़िया था, एक बहुत अच्छी चीज थी उसमें, गलती से भी किसी कौन से दुख वाले सीन को देखते हुए भी हवा हाय शब्द निकलना नहीं
चाहिए,
वाह ड्रामा वाह 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 वाह, ये यही निकलना।
ईश्वरीय विधान,
ईश्वरीय विधि विधान कौन सा है?
एक
मदद, दो दो वरदान थे ऐसे, एक तो मदद और हिम्मत के बारे में, जितनी हिम्मत उतनी मदद, चाहे गृहस्थी हो चाहे सरेंडर हो, बाबा ने बोला सबको है, विधि से सिद्धि सबको सेम है। और ऐसा दूसरा भी था, किसी किसी को अभिमान आ जाता है, हम तो पात्र है ही, बाबा हमको मदद नहीं करेगा तो किसको मदद करेगा, हम तो, हमारा तो ज्ञान योग है ही, हम तो सेवा की राजधानी हो गए।
उसमें अलबेलेपन और अटेंशन का अभिमान था,
अलबेलेपन और अटेंशन की लीला को समाप्त करो, अलबेलेपन की लीला,
अटेंशन की लीला,
नहीं अटेंशन की लीला, अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो।
अटेंशन का अभिमान
अटेंशन, वही ना, वही वही अभी मैंने जो बोला ना दूसरा, जिसमें अभिमान आ जाता है ना बच्चों को, तो बाबा ने कहा कि मदद से पात्र बनो, हिम्मत से पात्र बनो, हम तो पात्र है ही, हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम तो ज्ञानी योगी है ही, हम तो सेवा की राजधानी बन गए। ये इसमें
एक वरदान,
अटेंशन का भी अभिमान आ जाता है बच्चों
में। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अगर देवान आया
आज, आज कल 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 आज ही है शायद, अगर देवान आया तो
क्रोध,
क्रोध और जोश,
निरंतर योगी की बात है,
निरंतर बाबा ने कहा ना निरंकारी बनो, उसी में आज का ही है ना,
आज का ही है,
आज का ही होता है। देहवान आता है तो जोश और क्रोध,
क्रोध आएगा, इसलिए स्मृति रहे कि हम नहीं
निरंतर योगी। आज का है ना, हर कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी, संकल्प में भी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, को संकल्प में भी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, निरंतर योगी है, सदा योगी है,
इसलिए स्मृति रहेगी स्वराज अधिकारी है, तो फिर माया जी जगत जी,
जगत जी जाएंगे,
निरंतर योगी और वो बन जाए।
बाबा ने कहा
पूरा बता दिया अभी,
व्यापारी हो घाटे और फायदे का सोचो,
व्यापारी है ना घाटे और फायदे, कहाँ का हमारा फायदा है कहाँ का
घाटा है, सोच लो
जरा। ये ज्ञान रत्नों का व्यापार है, कोई विरला ही करता है बाबा ने कहा, उसी मुटली में ऐसा व्यापार है।
प्रजा
दास दासी जागर होने
प्रजा, प्रजा में
अगर ये ख्याल नहीं है तो घाटे का और दास दासी।
चलो व्यापार भी हो गया,
और इधर इधर से कुछ आने दो थोड़ा, निकालो माल,
ये है कुछ
चाचू के पास कुछ होगा माल, ये गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड है ना, जोरदार होता है मेरे पास माल। बाबा से जाके
हाँ, ये एक है जो अभी जब मैंने लिस्ट बनाई ना उसमें ये भी है, ये भी है,
लिस्ट बन गई है।
इन्होंने बाबा से पूछा था बाबा चाय पियोगे या कुछ
चाय,
कभी बड़ी बड़ी मजेदार रात भर बाबा से तो केबिन में बनाते थे, तो बोला बाबा से भी पूछ लो, तो बाबा से पूछा बाबा चाय पियो, बाप दादा चाय नहीं पीते।
आज सुबह हमने वो एक अवारे ब्राह्मण अपना किताब पढ़ रही, उसमें था कितना ऊंचा भाव क्या है जो तुम भगवान के साथ डैश करते हो, बोलो क्या होगा
भगवान के साथ,
एक शब्द था आज इतना उसमें एक वहारे ब्राह्मण आत्मा किताब है ना, उसमें 42 या 45 वाला है, कितना ऊंचा भाग्य भाग्यवान हो तुम कि जो तुम भगवान के साथ डैश 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 करते हो, क्या होगा। अरे बता दिया ना भगवान के साथ क्या क्या, मिलन मनाते हो, चिटचट करते हो, चलते फिरते घूमते फिरते और क्या होगा, पाठ बजाते हो, मौज मनाते हो, बात करते हो, पिकनिक, यही वर्ड था
देखा, ओल्ड इज गोल्ड निकला,
यही शब्द
है, किसी को नहीं आया,
किसी को ही नहीं आया, उधर भी नहीं आया,
अमृत वेला क्लब है, वही अमृत
वेला क्लब, क्लब 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 है वो,
एक बार
इसमें
अपन पहले हम भी उसमें टोलियाँ बांटते थे,
एक बार बाबा आए तो सब तो स्टेज पे भागते हैं, बाबा पूछ रहे जल्दी सोचा किधर हॉल में, तो बड़े बैठे हुए एकदम पूरा योग योग तो देख भी नहीं रहे उधर, जगदीश भाई जगदीश चंद्र सीता जी, फिर बाद में ब्रजमोहन भाई को बुलाया तो वो तो फट से जैसे ही नाम लिया सीधे हो गए उसके खड़े एकदम, लेकिन जगदीश भाई बाबा दो बार बोला सब जाके भाई साहब बाबा बुला रहे हैं,
जगदीश भाई को रहा करते भगवान खुद बुला के जाएंगे
ओके, जैसा है नरसिंह मेहता जैसे,
फिर जब स्टेज पे गए
वो बोलता मैं क्यों जाऊँ, मेरा श्री कृष्ण मुझे भोजन पानी पिलाएगा मैं क्यों जाऊँ पीने, ऐसे बोलता था
एक बार तबीयत भी बहुत खराब थी उनकी तो नीचे डायमंड हॉल में बाबा ने स्टेज पे बुलाया था, पेट भी ऐसा तो बोला कि गणपति डांस करो, तो एक टांग पे किया ऐसे करके जबकि तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ भी करा वो अलग था तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ ठीक थे
यहाँ
से ठीक करे।
तो अभी ना मैं एक अलग प्रकार का एक होमवर्क देंगे अलग टाइप का, एक एक जैसे वो आपने साकार वाली बात बोली ना, तो एक एक जन एक एक का अनुभव पढ़ के आए, अच्छा अच्छा पावरफुल, प्रकाश मुनि दादी, गुलजार दादी, शांता मुनि दादी वो किताब है आदि रहती
भाई, ये सबसे बड़ी
यमुना प्रसाद भाई का,
जमुना प्रसाद वो भाई, रतन मोहि दादी उनका भी है, और कौन सी दादी, गंगे दादी, गंगे दादी, ध्यानी दादी, ध्यानी दादी, भोली दादी, भूरी दादी, जाने वाले भूरी दादी,
भूरी दादी
ये ठीक पढ़ाया,
ये
भोली दादी,
ये जगदीश भाई ठीक है, ये आनंद किशोर दादा भाऊ, विश्व किशोर भाऊ, विश्व रतन दादा, और लास्ट चंद्रराज दादा, ये सबका ऐसा अनुभव पढ़ के आओ कि मतलब जो जो लिखा है उसकी हर, जैसे मुरली तो याद नहीं रहती पर अनुभव ऐसा है ना, एक बार पढ़ लोगे ना और दूसरी बार रिवाइज करोगे ना फुल याद, एक एक पॉइंट घोट घोट के
जानकी दादी
इतना जानकी दादी नहीं पढ़ना सबका है पर ये अच्छे, मतलब देखो ऐसा है ना, आप एक पढ़ोगे ना बाकी पढ़ने का इच्छा होगी, फिर एक पढ़ोगे ना तो और पढ़ने की इच्छा होगी, अभी और तो कितना भी पढ़ो बताओ एक घंटा बताओगे नहीं अगली बार,
अगली बार बता देगा
आपको ही बताना सर,
अभी नहीं सुनो बाद में सुनो
अगली बार,
ठीक है ना, मतलब वैसे के वैसे नहीं उनके जीवन के मेन मेन पॉइंट्स, जैसे ऐसा पॉइंट
याद
है, हाँ मतलब ऐसा कोई अनुभव जैसे मैंने वो बताया ना वो प्रेस कपड़े नीचे रख देते, ये जैसे कि मतलब वो थूक डांटना है जैसे बाप घर वालों को याद करना, मतलब ये कैसे
वैराग्य भी है पुराने,
वैराग्य आ जाता है ना उसमें ये याद करते,
बाबा वो खांसी आती थी वो कंट्रोलर लेके खड़े रहते थे बाबा, और उधर सुधर मुरली चल रही है वो लेके खड़े हैं, उधर थूक रहे हैं मुरली चला रहे हैं वो खड़े हैं जगदीश भाई लेके कटोरा,
आदि रतन किताब है उसमें सबके अनुभव लिखे हुए हैं, ठीक है आदि रतन में सबके,
अच्छा तो ब्रेक कर लो प्रकाश मंडला जी,
अब मुझे याद नहीं किसको क्या बोला, आप ही बोलो। शांतामणि दादी का बचपन, उसकी माँ, उसके पिताजी, क्या जबरदस्त है।
भोली दादी,
भोली
दादी, भोली दादी, बिशप किशोर बाबू
और जो कोई क्लास में कोई नहीं है जो आता है यूजुअली, ऐसा कोई है
इसमें? कौन नहीं है?
नहीं है तो ढूंढो, किसी से भी ढूंढो। अभी जब ढूंढने का काम मतलब वो आपके काम है, कैसे ढूंढना है, चाहे किताब से ढूंढो, चाहे टेप से ढूंढो, या लोगों से पूछो,
काम ही ढूंढो। सही
जो ढूंढना है जहाँ से ढूंढो। अरे भगवान को ढूंढ दिया, ये क्या है? बहुत छोटा काम है।
अरे बड़ा माल है संजय भाई बैठा ना लिटरेचर वाला,
फिर क्या पूरा निकालेगा एक एक किताब, ऐसी ऐसी किताबें पूरी है, और कहीं नहीं मिला तो इंटरनेट है, इंटरनेट पे भी लिखा है सारा यज्ञ का इतिहास। अरे मुझे नहीं याद इनको क्या था, विश्व रतन दादा, एक तो उसकी तो सेपरेट किताब। हाँ इनको क्या है,
विश्व किशोर बाबू,
विश्व किशोर बाबू, आनंद किशोर तो इनको दिया ना आपको, है ना? तो ये आनंद किशोर दादा,
आनंद किशोर दादा,
आनंद किशोर दादा बाद में आए, भाऊ तो पहले से है।
इनको विश्व किशोर
नहीं है तो ढूंढो ना, मिल जाएगा।
आप तो लेटेस्ट देखा ही हुआ है सारा ही, आपको माते मामला कितना बड़ा है।
अच्छा ओम शांति। Thank you.